नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पोलैंड को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और भारत के पड़ोसी देशों में आतंकी ढांचे को बढ़ावा देने में मदद नहीं करनी चाहिए। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्क्वाफ सिकोर्सी के साथ आज नई दिल्ली में बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पोलैंड के लिए भारतीय क्षेत्र अनजान नहीं है और वह सीमा पार आतंकवाद की दीर्घकालीन चुनौती से भलीभांति परिचित है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता में क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि हाल के समय में अमरीका और फ्रांस में उन्होंने यूक्रेन संघर्ष और उसके प्रभावों के बारे में भारत का दृष्टिकोण साझा किया था।
पिछले वर्ष न्यूयॉर्क में और इस वर्ष जनवरी में पेरिस में हमने यूक्रेन संघर्ष और इसके प्रभावों पर खुलकर अपने विचार साझा किए हैं। हमने बार बार इस बात पर बल दिया है कि भारत को चुनिंदा रूप से निशाना बनाना अनुचित और अन्यायपूर्ण है और मैं आज फिर से इसे दोहरा रहा हूँ।
संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान ने भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान वे भारत यूएई की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और संयुक्त अरब अमीरात व्यापार, निवेश, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को लेकर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत कांग्रेस द्वारा दिए गए अधिकार केवल कागजों तक ही सीमित रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह अधिनियम पूरे देश में लागू होगा और प्रत्येक ग्राम पंचायत इसके दायरे में आएगी।
100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी अगर दी है तो विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत दी गई है और केवल काम का अधिकार नहीं दिया है, 15 दिन के अंदर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। आपने कागज पर अधिकार दिया था, हमने जमीन पर उसको मजबूत करने का काम किया है। ये कानून पूरे देश में एक साथ लागू होगा, कोई भी ग्राम पंचायत इसके दायरे के बाहर नहीं रहेगी।
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान स्थायी समिति ने संरक्षित क्षेत्रों, वन जीव अभयारण्यों, बाघ अभयारण्यों और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं और रक्षा आवश्यकताओं और अवसंरचना विकास से संबंधित 70 प्रस्तावों पर विचार किया। स्थायी समिति ने सीमावर्ती और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रणनीतिक अवसंरचना से संबंधित 17 रक्षा संबंधी प्रस्तावों पर भी विचार किया। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज कहा कि देश की विद्युत वितरण कंपनियां डिस्कॉम ने 2024-25 में 2700 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ दर्ज किया है। आईआईटी दिल्ली परिसर में विद्युत और विनियमन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार आगामी बजट सत्र में विद्युत अधिनियम में संशोधन लाएगी जिससे इस क्षेत्र में होने वाले घाटे को कम किया जा सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि इस वर्ष नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली 77वीं गणतंत्र दिवस परेड के लिए लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के चतरू क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल एक पैरा ट्रूपर की मौत हो गई है। किश्तवाड़ जिले के ऊपरी इलाकों में छिपे संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाश अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई। अभियान कल चतरू क्षेत्र के मंदराल सिंहपुरा के पास सोनार गांव में शुरू किया गया था। अभियान के दौरान आतंकी मुठभेड़ में 8 जवान घायल हो गए थे। छिपे हुए आतंकवादियों के अचानक ग्रेनेड हमले से जवान घायल हुए थे। घायल जवानों में से एक हवलदार गजेंद्र सिंह ने जम्मू के एक सैन्य अस्पताल में इलाज के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पेन के कॉर्डोबा शहर के पास आदामूज में हुई रेल घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में घने कोहरे की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।